राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसिद्धदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 मई 1993 सायं लगभग 4 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण
था सुबह और कल भी कि भाई भोग की रुचि किसमें है और भोग की रुचि मिटाने के लिए वासना को मिटानी चाहिए तो वासना किसमें रहती है और वो कैसे मिटती है इसको आप विस्तार।
देखो भोग की रुचि खुद में ही होती है। खुद कौन है इसका उत्तर है कि मनुष्य है। आत्मा है जीवात्मा है वो परमात्मा है उसका अंश है कि नहीं मनुष्य। अधिकारी कौन है मनुष्य है। खूब सार बात बताता हूं। परमात्म तत्व की प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य है तो वासना मनुष्य में रहती है। और क्या कहा
वासना रहती किसमें है और उसको कैसे मिटाया जाए।
कैसे मिटाया जाए उसके लिए विवेक है और कर्मयोग है। दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही है और एक भगवान के शरण होता भगवान की आश्रय रहना। ये तीनों उपाय बड़े जबरदस्त उपाय है। इन तीनों में से जो आपको ठीक मालूम दे वो प्रसन्नता से आप पकड़ रहे। मानो ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग तो ज्ञान योग किसका नाम है कि जिसमें विवेक विवेक की प्रसन्नता है। सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य ये अच्छा मंदा ये दोनों का असर अलग अलग अनुभव करना, ये विवेक होता है। विवेक होने पर वो जो असुर भाग है उसकी निवृत्ति, जो जो विवेक की प्रधानता दोगे तो असत की निवृत्ति होती रहेगी। असत की सर्वथा निवृत्ति होने वासना मिट जाएगी। वासना तो असत की है, तीसरे से मिट जाएगी। और कर्मयोग ये है कि दूसरों का कैसे हित हो, केवल ये भीतर जागृत है कि सबकी सेवा कैसे बने, सबको सुख कैसे पहुंचे। उससे पहले ये याद करना है कि मेरे जीवन से किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, ये पहले पकड़ हुआ है। कभी किसी को भूल से भी दुख न हो, ये बात भीतर में पक्की पकड़ हो। इसके बाद ये होने लगेगा, दूसरों की सेवा होने लगेगी। और दूसरों की सेवा जो होने लगेगी क्यों अपनी वासना मिटेगी। दूसरों की वासना पूर्ति करने से अपनी वासना मिटती है। शास्त्रीय ढंग से धर्म के अनुसार, भगवान की आज्ञा के अनुसार, संत महात्माओं के आचरण और आज्ञा के अनुसार दूसरों की कामना पूर्ति करने से अपनी कामना नष्ट होती है। ये कायदा है, ये खास बात सुनने की है। न्याय युक्त कामना हो, उनकी कामना हो न्याय युक्त, धर्म युक्त, और अपने अधिकार से, अपने बल से अधिक नहीं हो, बल के अनुरूप हो। हम मानो कर सकते हैं, कर नहीं सकते वो आपकी उस जिम्मेवारी नहीं। अपने तो बल के अनुरूप हो और उनकी धर्मयुक्त कामना हो, हमारे वे चाहते हो तो वो उनकी पूरी करो, वासना मिट जाएगी। एक साधु थे, वो कह रहे मेरा ब्याह हुआ तो अशुद्ध ज्यादा होती है, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो मेरे को एक आम मिला बहुत बढ़िया, तो मैंने नहीं खाया, जाकर मैंने स्त्री को दिया। तो विचार आया कि हाथ के पास में ये मुख था, फिर ये पहले न खाकर उसको दिया, कारण क्या है कि उसको राजी करूं, ये भाव था। तो ये भाव होने से शुद्ध न खाकर उसको दिया, तो ये युक्ति मिल गई कि दूसरे को सुख कैसे हो। ऐसे विचार करने से अपने सुख का त्याग सुगम बस हो जाता है। पर लगन ये हो कि दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों का आदर कैसे हो, दूसरों की प्रशंसा कैसे हो, दूसरों का भला कैसे, दूसरों का कल्याण कैसे हो, ये भाव है ना। तो पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कसु नाहि। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। तो पहले पर पीड़ा बिल्कुल न करें और पर हित का विचार करें तो इससे वासना मिटती है। विवेक से सतर्कता विवेक होने पर असत की वासना है वही बात होती है। वासना द्विविधा प्रवृत्ता, शुद्धा च मनिन्द्रियता। शुद्धा जन्म विनाशिनी, शुद्ध क्या आगे भगवान की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, सत्संग मिले, शस्त्रास्त्र बढ़े, ये वासना बढ़ाओ और अशुद्ध वासना है उसको मिटाओ। और ये मिटानी है हमें, ऐसा विचार हो जाकर हो जाएगी। तो विवेक द्वारा मिटाओ और क्रिया द्वारा, कर्म द्वारा दूसरों की सेवा करो तो अपने सुख की इच्छा मिटेगी और भगवान के शरण में हे नाथ हे नाथ पुकारो। अब किस तरह से मिटेगी वो तो भगवान जाने, वो मिट जाएगी। भगवान को पुकारो, जब कोई वासना आ जाए, जब कोई मन में फूरना हो जाए, जब कहे जाए हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु ऐसे पुकारो और महाराज मैं क्या करूँ, मेरे हाथ की बात नहीं है, मेरे में ऐसी ऐसी इच्छा आती है, ऐसे ऐसे कामना होती है, हे नाथ हे प्रभु पुकारते रहो। कबूक दीन दयाल के कोई भनक पड़ेगी तो काम पड़ जाएगा, जो आपके सच्चे हृदय से निकल जाएगी तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा कार्य है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए। तो ये उपाय तीन खास है, इसके सिवा है अपने मन में हलचल होती है, वासना होती है, इच्छा होती है, संकल्प विकल्प होते हैं, उथल पुथल होती है, ऐसे समय में अपना जिस पर विश्वास है, जिसको आप श्रेष्ठ समझते हो, अच्छा समझते हो, उसको एकांत में जाकर कह दो, कहने मात्र से निकल जाती। तीन आदमी की बात बताइए नीति में, स्वामिनी स्नेह युक्त स्वामी हो और दिल जान का मित्र हो और अत्यंत भक्ति करने वाली अपनी स्त्री हो, तीनों में से किसी को निवेदन कर दो मिट जाएगी। निवेद दुख सुखी भगवती ऐसा अपना दुख निवारण कर दो सुखी हो जाओगा, बात समझ जाएगी, उनको कह दो सरलता से हल्का हो जाएगा जी, एकदम मानो कोई बोझ था और सही है ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से ये उपाय है कि इन उपायों को लाओ काम में, आप काम में लाओ और उसमें जो बाधा दी है वो फिर पूछो, फिर बताएंगे। मैं बताऊं इतना ही नहीं है, बहुत उपाय है, उपाय कम नहीं है। इस वास्ते इनको काम में लाओ। वासना कह जाती है कि मनुष्य में रहती है और कैसे मिटती है कि दूसरों को सुख पहुंचाओ, विवेक पूर्व त्याग करो और श्रद्धा पूर्व विश्वास पूर्व शरण हो जाओ, मिट जाती
है। ये सिद्धियां क्या है और कैसे प्रकट होती है?
इस सिद्धियों में फेर में मत पड़ना, ये प्रकट होती है एकाग्र मन होने से, मन एकाग्र होने से सिद्धियां आती है। पर सिद्धियों में फंस जाओ मुझे जयराम जी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, बाधक है, महान बाधक है।
क्या सिद्धियों से कोई लाभ नहीं है?
लाभ बहुत मामूली, नुकसान जाते नुकसान जाते।
क्या नुकसान बना?
मान बढ़ाई आदर अभिमान ये बढ़ता है, संसार मान बढ़ेगा, बढ़ाई होगी और मन में अभिमान होगा, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे अभिमान है। संस्कृति मूल फूल पर बनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये सकल शोकदायक है, कोई शोक बाकी नहीं करे, ऐसा अभिमान है, वो अभिमान बढ़ेगा, इस वास्ते नुकसान होगा। सब तरह का शोक, सब तरह का अभिमान, सकल शोकदायक अभिमाना, सकल शोक।
ये गंगा जी में या नर्मदा जी में या और सरयू आदि नदियों में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, तो फिर अलग से राम राम करना, सत्संग करना, भजन करना, इसे क्या जरूरत है?
अपने को रोटी मिल जाती है फिर उसका कमाने क्या जरूरत है, रोटी मिली जाती है फिर कमाने क्या जरूरत है। ये आदमी समझ दे रही है उनकी ये बात है। अब अगर हीरा मिल जाए तो एक हीरे में 1,25,00,000 रुपए होते हैं, तो मिल जाए लो तो पोट बांधेंगे, इसलिए जो उठने मुश्किल हो जाएगी, नहीं बंदे कोई उठाओ भाई, अरे करेगा क्या, एक एक वो मिलेगा, पर ये क्यों समझ पाए नहीं, फिर भी कह रहा गंगा जी में कर लो, ये कर लो, राम राम कर लो, एक कीमत समझते नहीं, तमाशा करते हैं, बालक कर दे, बालक तेरे ब्याह करना, तेरी कहानी भी नहीं लाओ, नहीं मारे के लिए क्या बया होता, क्या पता जू है, यू बात करते हैं, बेसमझी जी।
क्या गंगा आदि में स्नान करने से मुक्ति नहीं होती है?
मुक्ति कौन करता नहीं होती है, पर मुक्ति से जो चाहिए वो गंगा जी में, नर्मदा में, कावेरी में, सरयू में, वो यमुना जी में सब जगह स्नान करेगा वो तो। जो बढ़िया चीज है एक से मुक्ति हो जाएगी, नाम से मुक्ति होता तो नाम रात में जाएगा, उसको लोभ लगेगा। एक हीरे से काम बढ़ जाए और हीरा पड़ जाए खुद कितना लेगा, एक ही लेगा क्या बोलो? तो ये क्यों न समझने की बात है, आलसी आदमी बात है, इतने क्यों करे, इतने से क्यों करे?
केवल गंगा स्नान, नर्मदा स्नान आदि में संतोष नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संतोष सत्संग करे उसमें संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष हो धर्म ही तो सर्विक आता महत्व से, इसमें संतोष करना है आपकी उन्नति में मान बाधक है। संतोष और त्रिशु कर्तव्य है, सदारे भोजने धरे, तीन में संतोष करो, अपनी स्त्री में और भोजन में धन में, ईश्वर को संतोष। त्रिशु नैवत कर्तव्य, स्वाध्याय जप दानियो, जप में, दान में, स्वाध्याय में, शास्त्रों के अध्ययन पढ़ने में, सत्संग में, इसमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए। संतोष करता है वो तत्व तो समझा नहीं है, बिल्कुल भी समझा।
मेरी बहू मेरे से बहुत खटपट रखती है, तो सास होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? सासू होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए?
सासू हूँ।
हाँ। कोई सासू लिख रही है कि मेरी बहू मेरे से बहुत खटपट।
अच्छा।
तो सासू होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है?
क्या कर्तव्य ये है कि उनको प्यार से समझाओ, ज्यादा वो कहे तो उसको वो बात मत कहो, कहो तो प्यार से कहो, अपना करके कहो, अपना करके। और अपनी कमजोरी है देखो, वो आप ज्यादा नहीं दिखाई, वो थोड़ी बहुत कह नहीं, मेरी गलती हो जाती है, और उसकी गलती है वो बहुत कम कहो, और उसके गुण ज्यादा कहो, उनकी अच्छी अच्छी बातें हैं। ये कोई नहीं होता है जिसमें अवगुण ही अवगुण हो, गुण गुणी वैसी बात है। तो अपनी बहू के गुण गाओ, गुणों को अगर कहो कि बहू हमारी ऐसी उदार है, ऐसी रसोई बनाती है, इतना काम करती है, जो वे करती है वो चतुर है, बड़ी अच्छी है, ऐसे अच्छा काम करने वाली हो, उसकी वास्तविक प्रशंसा करो, आदर करो, याद करो, और प्यार से कहो बात, बात ऐसे ढंग से कहो कि जिसे वो न करें तो हमारे को दुख ना हो। तो कब तू कर ऐसा करने से, न करने से दुख होता है। तो क्या कहे कि बहू ये काम बड़ा अच्छा है, तुम करो जैसा कर दो, ऐसे प्यार पूर्वक कहो। उसमें एक तरीका ही नहीं है, हृदय में उसका भला चाहो कि इसका भला हो जाए, इसका स्वभाव सुधर जाए, इसका कल्याण हो जाए, इसका अंतकरण शुद्ध हो जाए, ये भला भाव आपके प्रति होगा तो आपका बड़ा मीठा असर पड़ेगा। पर हित बस जिनके मन माही, उसका हित आपके पास में नहीं माने तो दुखी मत हो आप। आजकल की छोरियां पार करके प्राय करके और सास जिठारी उसको नहीं मानती है। आजकल ऐसी छोरों में उदंडता ज्यादा है, छोरियों में उदंडता कम है। दोनों माप को देखा जाए तो छोरियों में उदंडता कम मिलेगी, छोरों में ज्यादा मिलेगी। परंतु आजकल शिक्षा भी छोरियों में भी पैदा हो गई है, नहीं तो छोरियों में नहीं थी पैदा। अब वैसी शिक्षा मिली वो बहू आएगी आपकी उठा कर, तो आदर करो, प्यार करो और भगवान की इसमें कृपा समझो। जो सासू का कहना बहू नहीं मानती उसमें सासू को मन ही मन खुश होना चाहिए, राजी होना चाहिए, भगवान ने बड़ी कृपा की, अनुकूल अगर बहू मिल जाती तो मैं तो फंस जाती, भगवान में लगती ही नहीं, ये भगवान बड़ी बढ़िया कृपा करी तो मैं फंसू ही नहीं, बड़ी भारी कृपा है भगवान की। नहीं तो महाराज छूटती नहीं, ऐसी बहू भी छूटती नहीं जो सामने बोले कड़ी बोले, वो भी छूटती नहीं, प्यारी मीठी बोले, क्या दशा हो गई, आपको गुलाम बना देगी वह, आपको स्वतः उसको गुलाम बनना पड़ेगा। कलकत्ता में एक दिन मैंने कहले बहुत वर्षों की बात, 30-40-50 वर्ष हो गया होगा, याद नहीं है, मैंने कहा कि मेरी बातें आप मानते तो मैं तो फंस जाता, पर आपकी ऐसी कृपा है छोड़ कर चलो याद ही नहीं आती, मेरे को कितनी छुट्टी दे दी आपने, बहुत कृपा दी। परंतु मैं तो चाहता हूँ मेरे को बंद हो, बोलो बंधन को चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कैसे बोलू मेरा कहना मानो, मैं जान नहीं सकता छोड़ नहीं सकता, फिर ऐसे ही आप जीवन बनाओ तो फिर छोड़ना हमारा मुश्किल हो जाएगा। पारमार्थिक तात्विक बातें सुनो और काम में लाओ और जीवन मुक्त हो जाओ, तत्व की हो जाओ, भगवत प्रेमी हो जाओ, योगी हो जाओ, जो वास्तव में दक्ष गीता में वो अपने में आ जाए। थोड़ी सी हिम्मत करो, बहुत जल्दी काम होता है। जिस समय में दुकानदार के माल बिक्री करना होता है उस समय में लोगों को बड़ा सस्ता मिलता है। आजकल भगवान के दरबार में ऐसा माल पड़ा है जो ग्राहक तो है थोड़े, माल है भगवान के ज्यादा, बहुत कोई चेत जाए तो बड़ा सस्ता मिलता है। कभी मौका, कभी बड़ा सुंदर मौका आया हुआ है। इस वास्ते अपनी वास्तविक तात्विक बातें धारण करो, फिर शंकाओं जो पूछो फिर उसका वैसे ही समाधान का अनुष्ठान करो। जैसे अभी पूछी ने वासना कहाँ रहती है, क्या होती है, अरे किससे दूर होती है, ऐसी पूछो मिल गया उत्तर तो उसका खूब अनुष्ठान करो कि ठीक अब वासना नहीं रह सकती, फिर आपके ठीक काम बनाओ, फिर पूछो दो बार तीन बार चार बार पूछते जाओ, जब तक समाधान ना हो तब तो पिंड मत छोड़ो, पीछे पड़ जाओ, जरूर काम होगा। इस विषय में ऐसी पारमार्थिक विषय में उन्नति अवश्य ही होती है, होगी ही, सांसारिक उन्नति हाथी बात नहीं, वो प्राग्ञ के साथ संबंध है, और इसमें प्राग्ञ इसमें केवल लगन के साथ संबंध है, आपकी इच्छा के साथ, जोर से इच्छा ऐसा करोगे तो हो जाएगा, उन्नति होगी एकदम ठीक बात। इसमें संतोष मत करो, सत्संग अच्छा मिल गया संतोष मत करो, सत्संग मिल गया सत्संग की बातें अभी काम में नहीं आती है, उसकी लगन होनी चाहिए, जिसकी काम में आ गई उसकी दुर्दृष्टि मत देखो। जैसे रास्ते हम जा रहे हैं और नींद पर दिखा कितना है तो इतने आगे वो मत देखो, इतना बाकी है वो देखो, आगे तो आगे क्या देखे उसका, देखो आगे इस तरह से जो गुण आ गए अच्छे आ गई उसकी परवाह मत करो, नहीं तो अभिमान बढ़ जाएगा। अरे आगारी देखो इतना काम बाकी पड़ा है, इतना काम बाकी है, उसको करो जल्दी से जल्दी। जानो भलन बाप गुस्सा ठीक, पैंडो भलन कोष को बेटी भलीन एक, और लैणो भलोनी बाप को साहेब रखे ठीक, बाप रहा भी कर्जा नहीं लेना अपने और तो ले क्या, एक कोष भी पहना बाकी है तो चलना है, वो तय कर रहा है मार्ग को, पैंडो भलोन कोष को बेटी भलीन एक, लैणो भलोन बाप को साहेब रखे ठीक, उसको काटो जल्दी। इस बात से कितना काम बाकी रहा है उसको दो, कितनी हो गई इसके विचार मत करो, ऐसा हो गया बड़ी शांति मिल गया ठीक है, अरे कुछ नहीं है, पूर्णता नहीं हो तो क्या करो, संतोष बीच में संतोष नहीं करो, पूर्णता का अनुभव करना है हमें तो करना है, जैसे जैसे करना है। नंदन तुम्हें तेरी गुणा ये वास्तु लक्ष्मी समा विषु गत्थत्वाय श्रेष्ठम अद्यैव मे मन मस्त युगान करेवा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदग्न धीरा न्याय रस्ता है हमारे उससे चलायमान नहीं हुआ धैर्य रखो प्रकृति सिद्ध में दंगे महात्मा नाम महात्माओं की स्वभाव होता है जो काम है वो असली उसमें लग गया वो पूरा कर रहा है जिसके लिए मानव जन्म मिला है वो काम करना है तत्वों की प्राप्ति करना है भगवान का प्रेम प्राप्त करना है निष्काम भाव प्राप्त करना है क्योंकि ये इसमें हमारा अधिकार है हम कर सकते हैं हमारे में योग्यता है हम अधिकार है इसके लिए अनधिकार कोई नहीं है ऐसी बात है इस बात से संतोष मत करो इतना मन लग गया इतना संतोष सत्संग कर लिया अपने काम में ठीक तरह से लाओ कहाँ कहाँ गलती रहती है क्यों रहती है उसको मिटाओ बहुत लाभ होगा जरूर उन्नति होगी इसमें उन्नति होगी ही नियम है इसमें कोई फैल नहीं होगा इसमें नुकसान तो होगा ही नहीं भक्ति कठिन करू री जान जावे नफा घना है नहीं हाँ हानि नहीं है धामम निमिवाने ते नस्खले न पते दिह ऐसा निष्कंठ का पंथा भगवान के चलने वाला ऐसा है जो आंख मीच लो दोनों में आखिर पहनना पड़ता है ये निष्कंठ का पंथा कोई कांटा करता नहीं है अल्लाह सीधा रास्ता है इसमें भगवान सहायक संत सहायक गुरु सहायक शास्त्र सहायक और भाई बैरी रखने बैर रखने वाला सहायक प्रेम रखने वाला सहायक उदासीन रहने वाला सहायक संसार सब सहायक सहायक होता उसे विघ्न डालने वाला पापों का नाश करने वाला आता है निंदा करने वाला भी बड़ी उपकार कर लो बड़ा बड़ा हित करता है मस्ती मस्ती सर्वास तो राम शिव रज हंसुभा हंस गिटाल चलो मन मेरा हाथ गिटाल चलो मन मेरा जगत पूरी अपने चलो अपना रास्ता ठीक है फिर चलो कोई शंका हो तो पूछ लो जहाँ विश्वास हो वहां पूछ लो जिस ग्रंथ में उस ग्रंथ से पूछ लो कोई संत मिले तो कोई सज्जन मिले तो उससे पूछ लो मार्ग जिसको पूछना होता है वो अरे भाई एक बार मार्ग पूछना आप मार्ग जानते हो पूछता ही नहीं मार्ग बताओ सीधी इस बात कहता है और जानता है नहीं जानता मुझे ही नहीं करना ऐसे संत जानते हैं नहीं जानते मन पढ़ पढ़ते हो असली जागृति होती है बीच में ऐसा तो पात्र को पात्र का विचार नहीं करता विचार जब तक होता है तब असली जिज्ञासा नहीं है कौन ज्ञान बताएगा कौन नहीं ये बात नहीं होता अब कौन रास्ता बताएगा नहीं बताएगा बात नहीं मत बताओ बताओ भाई रास्ता बताओ बस सीधी बात ऐसे प्रश्न पूछते जाओ करते जाओ जितना काम आते करते जाओ करते जाओ इसमें सिद्धि जरूर है अवश्य सिद्धि
शास्त्रों में आता है गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है परंतु जिस गृहस्थाश्रम में ऑपरेशन का पाप हो गया है वो श्रेष्ठ है या नहीं है
अब श्रेष्ठ में दबा लग गया और अब भी करो श्रेष्ठ गलती हो गई है पर अब करो अब भी श्रेष्ठ अब भी चलो वो तो एक नुकसान कर लिया हो गया भाई क्या करें भूल हो गई
इससे तो अच्छा ये गृहस्थ आश्रम में नहीं जावे ब्रह्मचर्य आश्रम में बैठे रहे अपना
भाई तेरे सुखो दी तुम तो ठीक है परंतु पाप करो अन्याय करो उससे ब्याह करना अच्छा बिल्कुल नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है उपकुर्वान दो तरह के ब्रह्मचारी होते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी विचार के द्वारा सब भोग इच्छा का त्याग करके ब्रह्मचर्य से ही संन्यासी बन जाते हैं। मनुष्य जन्म का तात्पर्य यह है कल्याण करना, वो लग जाए लगन और विचार द्वारा संसार के विषयों का त्याग कर सको तो ब्रह्मचर्य रखना अच्छा है एकदम। और त्याग न कर सको और अन्याय करो तो उनसे त्याग करने का अच्छा बहुत बढ़िया है। पर त्याग करना भोग इच्छा मिटाने के उद्देश्य से, भोग भोगने की इच्छा से नहीं, ये मिटाना है। बिना देखे मिटा नहीं सकते तो देख करके मिटा दो, अनुभव करके मिटा दो, किस तरह से मिटा दो, ये मिटाने का तात्पर्य है। घर में भी भाई बंधु आपस में खटपट होती हो तो प्रेम के लिए साथ रहो, प्रेम के लिए अलग रहो। अलग इस बात से घर में रहने से मतभेद होता है, खटपट होती है, तो अलग रहो, अलग रहने पर प्रेम बढ़ाओ। अब खटपट क्यों करो भाई, अलग हो गए अब तो एक भला करो। अपने भला का ही सिद्धांत बनाना चाहिए उद्देश्य, कोई करो बोले सब ठीक।
भजन का क्या स्वरूप है?
भजन का स्वरूप है खिंचाओ भगवान की तरफ प्रियता, पंडार सुन प्रेम सम भजन दूसर आर अस विचार पूरी मुनि मुनि कर्म राम गुण गान। मीठे लगे भगवान मीठे लगे।
भजन स्वधर्म है या शरीर धर्म है?
नहीं, भजन स्वधर्म है, शरीर धर्म उपकार है, सेवा कर रहा है, दूसरों को सुख पहुंचा रहा है, ये शरीर धर्म। वो भगवान को याद करना भगवान भी जा रहे, ये स्वधर्म है अपना खास। लग जाओ सच्चे हृदय से इसमें, देव संत महात्मा भगवान सब सहायक है। आप तत्व की जिज्ञासा करो कि ये तत्व क्या है, कैसे मुक्ति होती है, कैसे कल्याण होता है, भगवान प्रसन्न कैसे देते हैं, भगवान का प्रेम कैसे हो जाए, ये लगन लगाओ और पूछो हरे से भाई बताओ कैसे भगवान प्रेम कैसे हो कैसे हो, तो जरूर हो जाएगा। केवल लगन से संसाधन कैसे मिले, लगन से नहीं मिलेगा, लगन भी चाहिए और उद्योग करना होगा और प्राणी का साथ होता हो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। और इसमें प्राणी की बात नहीं है, इसमें तो केवल अपने लगन, ये केवल सहारा उत्कट अभिलाषा जरूर मिलता है। जय कर जही पर सत्य समय हूँ, सो तही मिल पर कसु संदेह हूँ, जही पर सत्य सदे हो, सत्य सदे सत्य जरूर। सत्य लगन वाला भगवान को प्यार लगता है, संतों को प्यार लगता है, भक्तों को प्यार लगता है, दुनिया को प्यार लगता है। इसी सच्ची भगवान की लगन होती है, डाकुओं को प्यार लगे, चोरों को प्यार लगे, भक्तों को प्यार लगता है, दुनिया को प्यार लगता है। इसी सच्ची भगवान की लगन होती है, डाकुओं को प्यार लगे, चोरों को प्यार लगे, दुनिया को प्यार लगे, भगवान को प्यार लगे, भक्तों को प्यार लगे, संतों को प्यार लगे, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि वो रस्ते पर आ गया। रस्ते पर ठीक है ये बात।
जगन्नाथ जी के हाथ है वो यूं
बस बात बताई थी ना, वो प्रेम में हो गया ऐसे ही। भाई महारानी इकट्ठी होकर के और जानने लगी कि भगवान ये गोपिकाओं को याद करते हैं, हरदम क्या बात है। तो विचार किया वो कौन बताओ, तो रोहिणी जी वहां रही हुई थी, तो रोहिणी जी के पास पहुंची, सब वहां अपने सासू के पास पहुंची। रोहिणी जी ने प्रश्न किया कि माता जी आप वहां रही हो तो हमारे को बताओ, आपके दादा की बात बताओ, क्या बात है, ये वृद्ध को याद क्यों करते हैं, वो बात बताओ। तो क्या भाई बताओ ही, परंतु दादा आ जाएगा तो नहीं बताऊ, कल ही आ जाएगा, अगर राम आ जाएगा ना तो फिर मेरे संकोच हो जाएगा, बेटी की बात है मेरे कैसे बताओ, वो आना नहीं चाहिए। तो सुभद्रा को क्या बेटी तुम आ बैठो, वैसे भाई आवे ना तुम आने मत देना, इसलिए माँ का हुक्म नहीं है किसी का। तो प्रेम की बातें करने लगी मेरा, अब कन्हैया की, गोपियों की, ग्वालों की, गायों की, तरह की गोपियों की बात छेड़ी विशेष। तो जहाँ भक्तों की बात छिड़ती है तो भगवान कहीं उठर नहीं सकते। सभा में बैठे थे, वहां मन उठा के चलो भाई घर पर चलो, घर पर चलो। भगवान को आए, आए तो सुभद्रा ने कहे भैया माँ ने मना किया, भीतर जाना माँ का मना है, बीच बन जाओ, माँ ने मना किया है, तू कभी यहां छाड़ जाओ। तो बीच में तो सुभद्रा जी दोनों तरफ एक दो कन्हैया एक राम, ये दोनों बैठ गए। अब वो थोड़ी थोड़ी आवाज सुने, आवाज सुने जैसे राम जी आवे आनंद मस्त हो जाए। तो ये बैठ गई हाथी हो गए सब ऐसे हो गए, सुभद्रा भी से बैठी, दोनों भाइयों की दशा ये हुई, सुभद्रा गई हुई। आज अचानक आ गए नारद बाबा, क्योंकि भगवान की बात चलती थी तो वे कहीं घूमते हुए खींचे हुआ कि वहां सुनो भाई द्वारका जी, तुम्हें खींचे आए आए देखा भगवान का रूप। तो भगवान की बोल क्या था नारद कि बना इस रूप से पधारो आप, इस रूप से बिलन होकर मृत्यु लोग में। तो जगन्नाथ जी उस रूप से आए, सुनने वो मूर्ति बनती है, एक वट वृक्ष है, वट वृक्ष में और विधि विधान से बनती है। ऐसे होता है भगवान की बुखार आता है, भगवान की दवाई की जाती है, जगन्नाथ जी का वहां भोग लगाया जाता है। कर्माबाई भोग लगा दी थी तो मर गई, जब भगवान उदास हो गए तुम्हारा क्या हुआ कि हमारी माँ मर गई, क्या करो मेरे खीसा कोट जी मारे माँ मर गई, मेरी माँ मर गई तो बड़ा खीसा हम जी माए आप लोग। तो उस खीसा को भोग सबसे पहले लगता करो भाई, तो सब जो भोग लगे तो भगवान उदास हो गया माँ मर गई। अब माँ भी तो कौन थी माँ, ऐसा प्रेम सब माए थी माँ थी माँ बल्कि माँ बड़ी मीठी लगती सबको, माँ शब्द अच्छा लगता क्या था माँ की माँ 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 ऐसी बात। इस बार से हाथ वैसे हो गया, हाथ आंख सब तो प्रेम में मस्त हो गए,
रोहिणी जी के रुक्मणी जी के बीच में जो बातें हुई वो जो ये सुनते हैं ये बातें हुई और भी कोई विशेष?
अब खड़ी हुई और सामने जानते नहीं भाई, हम तो जो पास में थे नहीं, हम तो सुनी हुई बात कर देते हैं, आप पौधे में सुनी आपको दे देते डाक या किसी को कार्ड दे दे, किसी को लिफाफा दे दे, किसी को जूता दे दे, प्रचार कर दे तो घर्षण देता है या कहते नहीं तुम्हारे ये आया है जो हमारे तो आया जो हम सुना देते हम तो डाक बांट देते ये आप घर को पत्र आया है कैसा है। वो प्रेम की लीला है भला वो पिताओं की खुद भगवान की समझे। छत्तीस वर्ष सास पे नाच नाचा हुआ लाला मैं तो सास दे दिया समझे। सास वर्ष नाच पे एक गोपिका ने कहा कि लाला वो गायों का गोबर मेरे को गई जो गोबर भर दिया टोकरी में जा दे, गोबर होता गीला जो भारी होता है ज्यादा तो फिर लाला तो क्या है टोकरी उठा दे रहा कि फिर बाप का नौकर हो गया मैं उठाऊ टोकरी को उठा दो कि मेरे बाप का नौकर तो जीव का तो है ना मक्खन दूंगे मक्खन हाँ मक्खन बैठी उठा दे दोबारा फेर दिया तो कितना मक्खन गएगी पता। अब मक्खन लेगी तो मैं कितनी टोकरी उठाई गिरूंगा क्या मैं गिरूंगा उनसे पूरी तो क्या ठीक है तो गुंडा को पता क्या लगे तो ठाकुर जी गोबर की आग से लकीर निकाल दी एक दो लकीर निकाल दी ठाकुर जी ने क्या किया, अपने गोबर से अपने लगा दीजिए दिखा दी खूब क्या है मारा। देखो लकीर नहीं का उतरना इतने दिन एक एक लकीर की बैठ पड़ेगी कितनी गोबर से लौटाएगी। ऐसी ऐसी बातें होती है गोप का और साथ ऐसी लीला करते भगवान। ऐसा भगवान का स्वभाव वो रसोई बनाने लगे तो लोग उसे बंसी बजावे बंसी बजा दे आग लकड़ियों पानी पहन लगे उसने आग सुन गए धुआं हुए आंखें फूट गए। अरे कहने यार रसोई बनाओ जीते तुम छाए थे कितनी देर तो मत बजा पर उसके तो मन में आ गया बचा दो। ऐसी बात है सुनारे पद सुना कृष्ण करने लीला का क्या क्या बातें होती थी सुनो।